ओम शांति, ओम शांति। गुड इवनिंग। आप लोग दो तीन दिन से सुन ही रहे हैं, थक तो नहीं गए? वैसे हर जीवन में एक मौका जरूर भगवान देता है जहां पर वो अपने आप को पूर्ण रूप से परिवर्तन कर सके। क्योंकि जब हम ऊपर जाए ना, कभी हम भगवान से ये शिकायत करने का मौका ना मिले कि भगवान अगर एक मौका मुझे दे देते ना, मैं ठीक हो जाता, सब ठीक कर देता। तो मान लीजिए ये वो मौका है, आपके घर बार के सारे काम काज से मुक्त होकर भगवान ने अपने घर में रख करके आपको हर प्रकार से पालना दे रहे हैं। सब खुश है? हैप्पी? नो? आप मुस्कुरा के तो बोलो भाई। बहने हैप्पी? नॉट हैप्पी? वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये पूरा जो सृष्टि है उसमें संबंध शब्द का बड़ा महत्व है। अगर आपके पास मान ले बहुत धन हो, बहुत बड़े बड़े पैलेसेस हो, हैं जी, ऐश्वर्य हो, ओदा हो, पर अगर आपको सच्चा प्यार नहीं है, सुख नहीं मिलेगा, हाँ या ना? हाँ जी। तो हर इंसान अपने जीवन में वो सच्चा, निस्वार्थ और संपूर्ण और अनकंडीशनल प्यार को ढूंढता है। क्यों? कि ये मनुष्य जीवन का सैप है, सार है। और इस संबंध में शुरुआत से लेकर अंत तक सृष्टि के संबंधों का बड़ा महत्व है। हम ये संबंध बनाते हैं उस प्यार को पाने के लिए, संबंधों का प्यार, संबंधों का सुख पाने के लिए इंसान संबंध बनाता जाता है, बनाता जाता है, फिर तोड़ता है, फिर बनाता है, फिर तोड़ता है, बनाता है और बनाता है और बनाता है। पर वन फाइन डे वो टर्न बैक करके मुड़ के देखता है, उसको जो चाहिए था, जिससे अंतरात्मा तृप्त हो जाए, जिससे अंतरात्मा जैसे स्थिर हो जाए, वो वाला प्यार कहीं मिल ही नहीं रहा। न पैसों से मिल रहा, न लोगों से मिल रहा, कोई स्थान से मिल रहा, हो दे उससे कुछ मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा। तो अंदर का जो दिल है ना, वो ढूंढता चला जाता है, कहीं इधर मिले, कहीं उधर मिले। धर्मों में ढूंढता है, पत्थरों में ढूंढता है, स्थानों में ढूंढता है, अभी देखो कलाओं में ढूंढता है। पर अंततः इंसान जब अकेला बैठता है तब उसका मन बड़ा परेशान रहता है, अशांत रहता है, स्थिर नहीं रहता। शांति इंसान को तब मिलेगी जब मन स्थिर हो, ठहराव सा हो अंदर से ना, और ठहराव तब होगा जब अंदर से आत्मा तृप्त होगी, और तृप्त तब होगा जब भरा हुआ होगा। हमें से सबको यह अनुभव है, मान लीजिए आपने काम काज करके घर आए, खाना परोसा गया, अब आपको बड़ी भूख लगी है, आपने खा लिया, खा तो लिया, वैसे तो पेट भर गया, पर आपको मजा नहीं आया। जो स्वाद आपको चाहिए था, जिस स्वाद में आपको मजा आता है, वो स्वाद आपको नहीं मिला, तो क्या करेंगे? फिर अलमारी खोलेंगे, कुछ ढूंढेंगे, फ्रिज खोलेंगे, कुछ और चीज खाएंगे, फिर वो खाएंगे, वो खाएंगे। पेट तो भर गया, फिर क्यों ढूंढ रहे हो और चीज खाने की इच्छा क्यों रहे है? क्योंकि पेट तो भर गया पर तृप्त नहीं हुआ। इंसान के जीवन में तृप्त मन वेरी इंपॉर्टेंट। और ये राजयोग जो है, चीजों से लोगों से वो तृप्त स्थिति को प्राप्त हो ही नहीं सकते। वो एक एकमात्र साधन जो अंतर आत्मा तृप्त हो जाए और हमेशा के लिए तृप्त हो जाए, वो है परमात्म प्यार से। क्यों? कि परमात्म प्यार एकमात्र प्यार है जिससे अंतरात्मा न केवल तृप्त होगी, जन्म जन्म के प्यास, जन्म जन्म के जो दुख दर्द हम लेके चलते हैं वो मिट जाएंगे। डॉक्टर के पास अब कोई बीमारी के कंप्लेन लेके जाएंगे, वो आपको दवा दिया जाएगा। अगर आपको कोई दुख है अंदर में, क्या उसके लिए कोई दवा है? दुख का तो कोई दवा नहीं है, क्योंकि दुख अपने आप में ऐसा दर्द है जिसका कोई दवा नहीं। तो दुख वाला दर्द जिसको कहते दुख दर्द, वो परमात्म ईश्वर का प्यार वो दुख वाला दर्द को मिटाएगा। ऐसा मिटाएगा छह मंत्र, उसका असर नहीं पड़ेगा दिल पर। और प्यार इतना अंदर से आत्मा भरपूर हो जाती है जो आत्मा शांति को पाएंगे, फिर ढूंढना खोज खत्म हो जाएंगे। क्यों? कि ईश्वर का प्यार निस्वार्थ है, संपूर्ण है, पवित्र है, रूहानी है, कोई कंडीशंस नहीं है। इस संसार में हर संबंध में स्वार्थ है, हर संबंध में कंडीशंस है। आप ये करेंगे तो मैं ये करूंगी, आप ऐसा करोगे तो मैं वैसा करूंगी, मैं खाना बनाऊंगी तो आपको झाड़ू लगाना पड़ेगा, आपको वो करेंगे तो हम ये करेंगे। हर चीज में कंडीशन, मैं पास होंगी तो आपको बाइक दिलाना पड़ेगा, कंडीशंस है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनेंगे, इस दुनिया में कोई भी इंसान कितने भी नजदीक वाला संबंध हो, आपको अपनी सारे कमजोरियां बुराइयों के साथ कोई अपनाता नहीं है, कोई नहीं अपनाता। आपके अपने भी नहीं, आपके माँ बाप भी नहीं। एक परमात्मा है जो हम जो है जैसा है, हमारे सारे कमजोरियों के साथ अच्छाइयों के साथ हमें अपनाता है, क्योंकि वो पिता है हमारे। ईश्वर जो है आत्मा का पिता है, प्यार का समुंदर है, दया का सागर है। हमारे सारे जो गलतियां हैं उसको क्षमा कर देते हैं, और सारे बुराइयों के साथ खामियों के साथ हमें अपना लेता है। वो है ईश्वर का प्यार। तो इस राजयोग में हम वो वाला प्यार अनुभव करते हैं। एक इंसान होकर और परमात्मा का प्यार अनुभव नहीं किया, एक सेकंड के लिए भी क्यों ना हो, तो जीवन में क्या पाया? इंसानों के क्या किया? पशु पंछी और इंसान में कोई भेद ही नहीं रह जाएगा, अंतर नहीं रह जाएगा। हम बच्चे हैं उनके, भगवान के बच्चे होकर के पिता और माता का प्यार न पाया हो, माता और पिता का सुख न पाया हो, वो दोस्त है हमारे, सबसे अच्छा दोस्त है, वो न प्राप्त किया हो, तो जीवन का कोई मोल ही नहीं है। तो ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो योग, जिसको राजयोग कहते हैं, वो योग सिखाया जाता है, वो परमात्म प्यार को प्राप्त करने के लिए, जिससे अंतरात्मा ऐसा तृप्त हो जाए, ठहर जाए। फिर ये वो खुशी है जो निराधार है। इंसानों के पास दुनिया में बहुत सारी खुशी है, हैं जी, पर वो आधारित है ना, उनके साथ हो तो मैं खुश हूं, ये नहीं है तो खुश हूं, वो चीज हो तो खुश हूं, वो खाने के लिए है तो मैं खुश हूं। वी आर डिपेंडेंट, पर वो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र कोई हो ना हो, कोई चीज हो ना हो, मैं आत्मा खुश रह सकूं, वो वाला खुशी जो है परमात्मा के संग का, परमात्मा के साथ का संबंध से आत्मा अनुभव करती है। कभी अकेला महसूस नहीं होता। अभी आप लोग 10 लोगों के साथ रहते हुए भी, परिवार में रहते हुए भी, कहीं ना कहीं आपका अकेलापन महसूस होता है। होता है, होता है, नहीं होता है? किस किस को होता है? बैठे ही 4 लोग हैं। हाँ, किस 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 को होता है? हाँ, आ जाए भैया, थोड़ा आ जाओ, थोड़ा लगे तो सही 4। हाँ, अगर पीछे से आगे आ सकते हैं तो आ जाइए, थैंक यू। तो वो वाला जो अकेलापन है ना, बड़ा खराब चीज है, मैं आपको बताऊं, बड़ा खराब चीज है। और व्यक्ति अकेला महसूस तब करता है जब अंदर से वो खोखला हो। बेशक आपका आपके आपके अलमारियां भरे पड़े हो, आपके सारा ठाट बाट चलता हो, पर अंदर से इंसान खाली है, खोखला है, तो अकेला भी महसूस करेगा। आपको पता है लोग आजकल इतने बिजी क्यों रहते हैं? यू नो दे आर टू मच बिजी। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद, क्योंकि थोड़ा सा भी उनके पास समय मिलता है अकेला बैठने को, उनको डर लगता है क्या करें अब हम। इसलिए आजकल जो है ना, ये सबके पास ये खिलौना मिल गया, 2 मिनट भी मिलेगा वो शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो रख करके, सब कुछ रख करके, टीवी ऑफ करके, साउंड ऑफ करके, शांति से बैठने में लोगों को डर लगता है, क्योंकि अपने आप को फेस कैसे करें, अपने आप का सामना क्या करें, और करें तो क्या देखें, अंदर तो खाली पड़ा हुआ है। वो खालीपन से इंसान डरता है, इसलिए कुछ न कुछ चाहिए उनको, कोई साधन चाहिए, कोई साथ चाहिए, कोई म्यूजिक चाहिए, कोई वो चाहिए। अरे ये तो कब तक रहेगा? पर ये जो साधना ईश्वर ने दिया है कि आपका बुद्धि का योग जो है मेरे साथ लगाओ, बस इसको कहते राजयोग। बड़ा सहज है। अब इसको राजयोग क्यों कहते हैं? राजयोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे संसार में जितने भी योग हैं, यू नो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस, इतने सारे मेडिटेशन है, योग के नाम से बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। इन तमाम योग के मेडिटेशन के जो फल है वो एक परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने से मिल जाएगा। आप एक रिटेल दुकान है जी, जिसमें से जाएंगे आप चॉकलेट खरीदेंगे, वहां जाएंगे सॉक्स खरीदेंगे, एक पूरा मॉल है जिसमें सब कुछ भी है, एक ही दुकान में आपको सब चीज मिल जाए, तो और दुकानों में जाने की आवश्यकता नहीं ना। तो भगवान सुपर मार्केट है, सब कुछ उसमें मिल जाएगा, एक ही के पास सब कुछ मिल जाए, तो बुद्धि क्यों भटकेगी जी, है जी। इसलिए इसको राजयोग, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचे से ऊंचे के साथ हमारा योग है, इसको राजयोग कहते हैं। और सारे योगों का फल इसमें समय सम्मिलित है जी। और दूसरा रीजन इसलिए राजयोग कहते हैं, आत्मा जो है, आप लोगों ने फर्स्ट लेसन सुना होगा आत्मा के बारे में, है जी। आत्मा जो है इस शरीर का मालिक है, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, और वो मैं हूं आत्मा। अब बात यह है कि जैसे नहीं कहते गाड़ी घोड़े को खींच रहा है, घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है, कौन किसको खींच रहा है? ऐसे खींचते कौन किसको? घोड़ा गाड़ी को खींचता, गाड़ी घोड़े को खींचता? घोड़ा खींचता है ना गाड़ी को, तो आप तो ऐसे देख रहे हो जैसे घोड़ा गाड़ी, गाड़ी घोड़ा पर हमारे पास उल्टा है, ये है गाड़ी, ये है घोड़ा, है जी। अब क्या है कि ये इंद्रियां, कर्म इंद्रियां जो है, आंख है, कान है, जुबान है, हाथ पैर है, और हमारे मन बुद्धि संस्कार है वो आत्मा को अपने तरफ खींचता है, ये शरीर अंग जो है वो अपनी तरफ पुल करता है। अब आत्मा जो देखती है उसके तरफ, जैसे घोड़े को ना ऐसे बांधते, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं अब लोग, हाँ साइड में ऐसे बांधते हैं ब्लाइंडर्स जैसे, ताकि वो घोड़ा इधर उधर देख करके आकर्षित होके चला ना जाए। वो बांधते वो तो सीधा सीधा चले, जैसा वो घोड़ा चलाने वाला उसको चलाए। अब आत्मा के लिए आंखें हैं, आंखों द्वारा तो सारी दुनिया देखती हैं, हैं जी। अभी यहां तो ब्लाइंडर्स बांधा नहीं गया है, हमें तो सब दिखाई दे रही है, जहां जो आकर्षित होगा वहां आत्मा। तो आत्मा इंद्रियों के वश होने के कारण आत्मा दुखी है, क्योंकि आत्मा शक्ति है ना, तो बंद गई है। अब राजयोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इस योग से पुनः आत्मा अपने मास्टरी को पाएंगे, एंड सो दिस इज कॉल्ड एज राजयोग इज कॉल्ड एज द योग ऑफ सेल्फ मास्टरी, खुद के ऊपर वो मास्टर बनेंगे, मालिक, मैं मालिक हूं इन कर्म इंद्रियों के, मैं मालिक हूं, हम मालिक बनेंगे, दास नहीं है हम, मालिक है, इसलिए इसको राजयोग कहते हैं। और इस योग को कर्म योग भी कहते हैं, इस योग के विभिन्न नाम हैं। अब ये नहीं है कि आपको एक ही जगह पे बैठ के योग लगाओ, बस योग 10 मिनट हुआ पूरा हुआ, योग पूरा हुआ, चलो भैया हो गया अब अपने नॉर्मल, नहीं, ये चलते फिरते भी योग लगाया जा सकता है। ये एक जगह बैठ करके बेशक लगाना ही चाहिए अभ्यास के, पर ये अभ्यास इतना होना चाहिए कि हमको चलते फिरते भी वो स्मृति रहे मन में, हैं जी। जैसे आप अपने बच्चों को याद करते हैं, जैसे अपने अपने प्रियजनों को याद करते हैं, मित्र संबंधी को याद करते हैं, ऐसे हम शिव बाबा को याद करते हैं। हम यहाँ पर मेडिटेशन, योग ये शब्द का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत इजी हम क्योंकि क्या है कि इन शब्द, ये शब्द जो है ना मन को बहुत उलझाते भी हैं कि हम मेडिटेट नहीं कर पा रहे, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, मन एकाग्र नहीं हो रहा है। हर इंसान को एकाग्रता एक स्वाभाविक कला है, वेरी इजी। हमें सिर्फ इतना करना है जो कर रहे हैं उसमें वो आनंद से करें। कॉन्सेंट्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट यू एंजॉय। अगर कोई कार्य आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं उसमें आपका मन नहीं लगेगा, या सो कॉन्सेंट्रेशन तो हर इंसान के अंदर नेचुरल है, स्वाभाविक है। अच्छा अभी एक एक्सरसाइज करते हैं, ओके ओके, एक छोटा सा, कौन कौन करेगा, छोटा सा बैठे बैठे मैं एक कहानी सुनाऊंगी, आप ध्यान से, किस किस को नींद आ रही है, नींद आ रही है, सवेरे से बैठे मैं समझ सकती हूँ, सुने जा रहे यहाँ के पात्रदार बदलते जाएंगे पर सुनने वाला तो वही है श्रोता। एनीवे मैं एक कहानी सुनती, ध्यान से सुनना, मैं फिर पूछूंगी, ओके सुन रहे सभी कहानी, वेरी गुड, ओके। एक एक राजकुमारी थी, वो बहुत सुंदर थी, कैसी थी राजकुमारी, बहुत सुंदर, वो पूरे देश में उस राजकुमारी से अत्यंत सुंदर और कोई थी नहीं। क्या बाल था, क्या नाक नक्शे थे, वंडरफुल थी वो, है ना। और उस राजकुमारी के पास एक घोड़ा था, सफेद वाला घोड़ा, वो भी बहुत सुंदर वाला घोड़ा था, ऐसा घोड़ा कई देशों में ऐसा घोड़ा तो था ही नहीं, तो एक अनोखा घोड़ा उस राजकुमारी के पास था। वो राजकुमारी उसको शिकार खेलने का बड़ा शौक था उसको ना, एक दिन और राजकुमारी घोड़े के ऊपर बैठ के शिकार पर चली। राजकुमारी कहाँ चली, शिकार पर चली। शिकार करते करते चलते 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 ये समय हो गया शाम, फिर वो भटक गई, उसको रास्ता भटक गई, भूल गई, है ना। फिर कैसा आना है उसको पता नहीं चला। फिर आगे चलते चलते उसने एक सुंदर पहाड़ देखा, बहुत सुंदर पहाड़। वो शाम का समय, जैसे सूर्य के किरणें वो पहाड़ पर पड़ते रहे, वो एकदम गोल्डन कलर का बन गया पहाड़। पहाड़ क्या बन गया? हाँ, अब आप लोग क्या देख रहे थे, क्या देख रहे थे जी? क्या देखा? पहाड़ देखा। और क्या देखा? राजकुमार। कैसे वाली राजकुमारी को देखा? वेरी गुड। और क्या देखा? घोड़ा देखा। कैसा वाला घोड़ा देखा? सुंदर वाला देखा। कौन सा रंग का देखा? ये सभी जो मैंने कहानी बोला, वो आंखें बंद करके देखा, आंखें खुला देखा? वेरी गुड। सुना और मन से नहीं देखा। हाँ, इतना बड़ा इंसान यहाँ बैठा है, मुझे नहीं देखा, राजकुमारी को देख रहे थे आप लोग? यहाँ राजकुमारी थी, है, यहाँ घोड़ा है, पहाड़ है, जंगल है, वो सारा घूम के भी आप लोग आ गए। इसको कहते योग। सिंपल, ये आंखें खुली है, मुझे देख रहे हैं, आंखें मुझे देख रही हैं, कान से मेरी आवाज आपको सुनाई भी पड़ रही है, मगर आपकी बुद्धि जो है किसको देख रहे थे? राज को। कैसी वाली राजकुमारी? मैंने वर्णन किया था, पर आप अपने हिसाब से आंख नाक अपनी इमेजिन किया, अपने अपने कल्पना से राजकुमारी को देख लिया, हाँ जी, ठीक है। और वो पहाड़ तो है ही नहीं, यहाँ पहाड़ ही नहीं है, पर आपने पहाड़, वो भी गोल्डन वाला पहाड़ भी देखा है। और बैठे कहाँ हो? कहाँ बैठे हो भाई? मेडिटेशन हॉल में बैठकर राजकुमारी को देखते हुए, जंगल के सैर करते हुए, फिर गोल्डन पहाड़ी देख करके वापस आ गए। इसको कहते हैं योग। अब जब राजकुमारी की कहानी सुनाई आपको, तो ना नींद आई, ना आंखें बंद की, ना राजकुमारी का नाम जपा, ऐसे ही देख लिया। जब ये परमात्मा को याद करने की कहानी सुनाते हैं, बड़ा नींद आता है। इसमें कितना करो भाई, आंखें बंद करो, जप करो, मुद्रा लगाओ, आसन लगाओ, अगरबत्ती जलाओ, भजन करो, तब जाके मन लगे, लगे ना लगे, ना लगे तब भी घंटी कौन बजी, फोन किसका आया, ये सारा हमको याद रहता। अच्छा, जब मैं कहानी सुना रही थी, कौन कौन ध्यान से सुन रहे थे? वेरी गुड। जब मैं कहानी सुन रही थी, ये कहानी सुनते वक्त आप कुछ और चीजें याद की? कौन कौन किसी और चीज को याद नहीं की, हाथ खड़ा करे। जब कहानी सुन रहे थे और बातें याद कौन नहीं किया? वेरी गुड। इसको कहते हैं संन्यास योग। आप अपनी दुनिया को छोड़ा? नहीं। जब हमारा मन एक में लगा रहता है, दूसरी बातें खुद ब खुद हम भूले हुए होते हैं। याद करना प्रेम है, संबंध है, भूलना त्याग है, बस। ऐसे नहीं आप योग करने ब्रह्मा कुमारियों के पास आओ तो आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा। छोड़ के कहाँ जाओगे भैया? आपको पता है, जितना छोड़ोगे ना उतना ज्यादा याद आएगा। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं। आप फिजिकली जिस स्थान से भूलने के लिए, व्यक्तियों को भूलने के लिए उनसे दूर जाओगे, उतना ज्यादा वो लोग याद आएंगे। बगल में रहेंगे याद नहीं आएगा, उनसे फिजिकली दूर हो जाएंगे बड़ा याद आएगा। ये साइकोलॉजी है। तो परमात्मा हमको, शिव बाबा ये सिखाते हैं, हमें घर बार नहीं छोड़ना, संबंध नहीं छोड़ना, हमें रहना उसी घर में, उन्हीं संबंधों के बीच, सारे हमारे कर्तव्य निभाते, हमारी ड्यूटी निभाते, जिम्मेदारियां निभाते, सिर्फ मन को ईश्वर में लगाना, बस बात खत्म। जैसे यहाँ बैठे बैठे राजकुमारी को देखा, घोड़ा देखा, आपको बैठे बैठे चलते फिरते शिव बाबा को देखना है, बस। डिफिकल्ट? इजी? इजी या डिफिकल्ट? अभी आपने कहानी, एक मिनट में पूरा कर देती, यहाँ बैठ करके राजकुमारी की कहानी सुनी ना, अब आप यहाँ से डाइनिंग तक चल के जाओगे, तो चल यहाँ से चल के डाइनिंग तक चलते चलते राजकुमारी को याद नहीं कर सकते? कर सकते? नहीं कर सकते, है ना। यहाँ से आप नीचे अब रोड स्टेशन पे जाओगे, आप एयरपोर्ट में जाएंगे, चलते चलते सफेद घोड़े को याद नहीं कर सकते? आपको बैठ करके ही राजकुमारी को याद करना जरूरी है। तो वो राजकुमारी आपने जब देखा भी नहीं है, हमने सिर्फ ये बोला सुंदर है, अपने हिसाब से अपने अपने अपनी सुंदरता के हिसाब से आपने देख ली, शिव बाबा को भी ऐसे याद करना। जी अब बोलिए। आई नो, वेरी इजी। देखो योग किसी इंसान के लिए असंभव भी नहीं है, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि योग जो है जीवन का एक हिस्सा है। अब ये योग संस्कृत शब्द है, हाँ जी, अब ये संस्कृत शब्द को आप बगल में रख दो, हम इस शब्द का उपयोग ही नहीं करेंगे। इसका वास्तविक अर्थ है, योग का वास्तविक अर्थ है याद करना, बस। अभी याद हम उन्हीं को करेंगे ना जिनके साथ हमारे संबंध है, जिनको हमने देखा ही नहीं, जिनको हम जानते भी नहीं, जिनके बारे में हमने सुना ही नहीं, उनको याद भी कैसे किया जा सकता है जी। अब आपको दो दिन से आत्मा का परमात्मा का परिचय तो दिया ना, शिव बाबा कैसे एक बिंदु है, जैसे मैं आत्मा एक बिंदी हूँ, शिव बाबा भी बिंदी है, उनका नाम रूप देश काल, मेरा संबंध कितना। देखो ये शरीर का जितने भी संबंध है ना, आपके मामा काका चाचा भाई बहन माँ बाप whoever it is, ये सारे संबंध सिर्फ एक जन्म के, जैसे ये शरीर खत्म संबंध खत्म, वो जाएंगे स्मशान तक, आपको छोड़ाएंगे, स्मशान से आए पानी के साथ वो संबंध खत्म हो गया, क्योंकि वो संबंध था भी शरीर का ना, पर शिव बाबा के साथ हमारा संबंध वो आत्मा का संबंध है, क्योंकि वो आत्मा का पिता है, आत्मा का बाप माता है, आत्मा के लिए बंधु है, आत्मा के लिए वो हमारा बहुत बहुत प्यारा सा दोस्त है, आत्मा का रक्षक है, वो आत्मा का सारा संबंध है, भाई समझो, बच्चा समझो। देखो भक्ति मीरा थी, वो भगवान को अपना साजन समझती थी, वो स्वामी है, रक्षक है, वो सब कुछ भी आत्मा का संबंध है वो। अब आत्मा तो मरती है नहीं, आत्मा तो अमर है ना, आत्मा के साथ का जो संबंध है वे कभी खत्म नहीं होंगे। हम बेशक भूल जाए पर बाबा तो नहीं भूलते ना, क्योंकि वो बाबा है हमारे, पिता है वो हमारे, वो कैसे भूलेंगे। हाँ जी, कब कब इंसान, हम सब बच्चे मुश्किलात में होंगे, वो रक्षा करता है, उनका कर्तव्य है। हाँ ये बात अलग है कि हम भगवान के जो हेल्प है, मदद है, हम उसको ले पाने की क्षमता हम रखते हैं नहीं रखते हैं वो अलग बात है। हमारे में इतनी एबिलिटी है जो कोई हमें सहारा दे रहे हैं, हम देख भी पा रहे हैं, वो अलग बात है, पर वो रक्षा करता अवश्य है। कभी कभी हमको दुख नहीं दे सकता। अब मेरा जो परमात्मा का संबंध है वो दो प्रकार के हैं, ध्यान से सुनेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको हमें योग लगाना है ये बहुत जरूरी है। एक है भक्ति वाला संबंध, एक है ज्ञान वाला संबंध, अर्थात एक है धर्म का संबंध, एक है आध्यात्म संबंध। अब धर्म के संबंध में बड़ा विचित्र, यू नो लाइक बहुत सारे नाम है, रूप है, बहुत सारे वेशभूषाएं हैं इसके साथ जुड़े हुए, सारे यू नो रस्म रिवाजें हैं, ये सब कुछ है, पर ये आध्यात्मिक संबंध का जो है इसमें कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है। आप राजा हैं जी, आप बड़े महारानी होंगे, आप बड़े डायरेक्टर होंगे, बड़े मिनिस्टर होंगे, अपने बच्चे के लिए क्या है, कौन है आप, अपने बच्चे के लिए क्या है, क्या आपका दबदबा है, आप चलोगे तो लोग खड़े हो जाएंगे, वो जो भी है दुनिया में चल रहा, पर अपने घर में जब अपने बच्चे के पास आएंगे आप कौन होंगे, सिर्फ माता या पिता होंगे। वो बच्चा आपको, आपका नाक भी पकड़ेगा, आपका कान भी पकड़ेगा, आपके साथ खेल भी सकता है, आपके ऊपर हक लगता है ना बच्चे का, आप डिमांड भी कर सकते हो, आपका बाल भी खींचेगा, बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा, उसको लगता है ये पूरा की पूरा पापा जो है वो मेरा है, ये पूरा की पूरा जो ये मामा है मम्मी है वो मेरी है, बात खत्म। आप कौन है क्या है बच्चे को कोई लेना देना नहीं है। ये है आध्यात्मिक संबंध, वो केवल केवल वो मेरे लिए पिता है, वो भगवान होगा, ईश्वर होगा, सर्वशक्तिवान है, वो सब है, पर वो मेरे लिए क्या है, बस इसको कहते हैं राजयोग। मैं जो हूं, मैं जैसा हूं भगवान, मैं तेरा, तुम जो हो जैसा हो भगवान तुम मेरा, बात खत्म। वेरी इजी, बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं है योग में। जब हम धर्म के या भक्ति वाला संबंध जोड़ते हैं वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए मन ही नहीं लगता, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशन में, वो फॉर्मेलिटीज में प्यार नहीं होता है ना। अभी आप मेरे पापा है, मेरे मम्मी है, मैं पापा की तरह मिलूंगी तो फॉर्मेलिटीज थोड़ा ही होगा। आप पापा है पर आप मिनिस्टर है, तो मेरे को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, मुझे बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है ना। पर शिव बाबा जो है मुझे आत्मा का वो पिता है, बस वो सतगुरु है, स्वामी है, पिता है, माता है, मेरा अपना है, मैं दिल की हर बात उनके साथ में शेयर कर सकती हूँ, अपना सुख दुख सब मैं उनके साथ में बोल सकती हूँ, और मेरा हर बात सुनेंगे, हक है, सुनाना मेरा हक है, मदद करना उनका हक है। और एक बात ये ध्यान से सुनेंगे, आप में से कौन कौन अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं, देखते हैं ना, सब देखते हैं ना। अब ये जो चेहरा है ना, या तो मम्मी की तरह दिखता होगा, या तो पिता के तरह दिखते होंगे, या तो हमारे जो संबंध है, संबंधी हैं, उनके माँ के तरफ कोई होंगे, पिता के तरफ कोई होंगे, ऐसे चेहरा ये दिखता होगा, मिक्स भी दिखता होगा, नाक पापा के तरह, आंख मम्मी की तरह, ऐसे भी दिखता है। तो टोटली माँ बाप हमारे चेहरे से, हमारे स्वभाव से झलकता है। ये देखे, अच्छा ये शर्मा जी का बेटा, अरे बिल्कुल बिल्कुल आप शर्मा जी से दिखते हो, है ना। बेटी को देखते, अरे बिल्कुल ये ममता है ना जो वाली, उनकी बच्ची है, बिल्कुल तुम वैसी दिखती हो। तो चेहरे से उनके माँ बाप का पता चल जाता है। और पता है, ये तो मैं साइंस बोल रही हूं, ये हमारे खून में, रगों में माता के सात पीढ़ियां और पिता के सात पीढ़ियों के सारे उसमें जीन्स है, सात पीढ़ियों के जीन्स है, माता पिता के जीन्स हमारे रगों में। हमने जबकि दादा को देखा भी नहीं है, देखा है नहीं देखा, पर सारी जीन्स हमारे रगों में उनके अब मान लीजिए आपके आपके परदादा बड़े संगीतकार अच्छे थे, बड़े अच्छे गाते थे, हमको तो कभी गाने का तो गा भी नहीं पता, पर वो हम अगर थोड़ा सा हम रिहास करेंगे हम बड़ा बढ़िया सा गा सकते, क्योंकि वो जीन्स है, हमको सिर्फ वो जीन्स को बाहर निकालने वाली बात है। और कोई आर्किटेक्ट होंगे, मेरे जो दादा के वो शिल्पकार थे, अब हमको तो मटका बनाना भी नहीं आता, खाना बनाना भी नहीं आता, पर अगर मैं उसको करूं तो बहुत अच्छा बन सकती हूँ। तो वो कलाएं सारे हमारे में भरे हैं, जैसे इस शरीर में सात पीढ़ी के जीन्स है, ये तो फिर भी शरीर खत्म तो जींस भी खत्म ना, पर आत्मा में परमात्मा पिता है, तो परमात्मा के सारे गुण, सारी शक्तियां, सारे अच्छाई हम सबके आत्मा के रग रग में है, इसलिए हम उनके बच्चे हैं, हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। शेर का बच्चा कौन होगा? शेर का बच्चा कौन होगा? बिल्ली। हाथी का बच्चा कौन होगा? परमात्मा का बच्चा कौन होगा? तो डर कहां से आएंगे आपको? किसके बच्चे? अबे राजकुमार, राजा का बच्चा, राज को क्या वो छोटो 3 साल का भी होगा क्या वो उस बच्चे का ठाट होगा, क्योंकि उसको जन्म से पता मैं राजकुमार हूं। राजकुमार हो, राजा हो, है तो इंसान ना, पर हम किसके बच्चे हैं? राजाओं का राजा बनाने वाला, देवों का देव, कालों का काल, इतना ऊंचते ऊंच सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ के हम बच्चे हैं, और हमारी ये हालत, शांति के लिए ढूंढ रहे हैं। वो शांति का सागर है, वो सागर जितना, सागर भी छोटा शब्द है, सागर भी इसलिए बोला जाता क्योंकि हमने सागर देखा है, हमको सागर से बड़ा क्या है हमको नहीं पता। वो प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, सर्वशक्तिवान है, ऐसे पिता के हम बच्चे, हमको लगता है कि हमसे ये नहीं होगा, हम कैसे करेंगे, वो क्या, बहुत सारे उलझनों के साथ हम जी रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। शांति के लिए ढूंढ रहे हैं, हाँ जी, राजा का बच्चा भीख मांगे अच्छा लगेगा? हाँ जी, तो ईश्वर के हम बच्चे हैं, शांति तो मेरा धर्म है, प्रेम मेरा धर्म है, सुख से जीना मेरा हक है, और हम कहां उलझे हुए हैं, कहां भटक रहे हैं, मन में इतना दुख लेकर के चल रहे हैं, इतना सारा कड़वाहट लेकर के चल रहे हैं, ये सही बात नहीं है। फिर हम ईश्वर के बच्चे कैसे बने? ईश्वर कड़वा है कि मीठा? कड़वा है कि मीठा, है ना? तो हमारे अंदर कड़वाहट कहां से आ गया? भाई आम के पेड़ से, आम के पेड़ से, आम के बीज से आम ही निकलता है ना, गन्ने से गन्ना ही निकलेगा ना, करेला तो नहीं निकलेगा। तो हम करेले कैसे बन गए? अब गन्ने का किसी भी हिस्से को आप खा ले तो मीठा ही होगा, आम खाओ फिर भी कहीं कहीं ना कहीं खट्टा, यू नो, खट्टा खट्टा थोड़ा सा आम होता है। पर गन्ने की बात लें, गन्ने किसी भी तरफ से, किसी भी कोने से आप गन्ने खाएं तो मीठा ही मीठा है। जैसे शुगर मिश्री गुड़ वगैरह बनता है, तो परमात्मा किसी भी एंगल से, किसी भी कोने से आप देख ले तो मीठा ही मीठा है। ऐसा मीठा बाबा के हम बच्चे, हम अपने दिल में कड़वाहट क्यों लेके घूम रहे हैं? अच्छी बात नहीं ना, हम दो मीठा बोल भी नहीं बोल सकते, अरे मुस्कुरा भी नहीं सकते। पिक्चर लेते हैं ना, फोटो लेते वक्त भी बोलना पड़ता है, स्माइल करो। हम इंतजार करते हैं कि एक बोले तो हम स्माइल करें, मैंने स्माइल करने के लिए भी हमसे नहीं हो रहा, इतने थके पड़े हैं। मुस्कुरा तो सकते हैं ना कि नहीं मुस्कुरा सकते? अगर आप मुस्कुराना सीख लेंगे ना, फिर पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये स्वाभाविक सुंदरता देंगे। कितने भी लाल हरा जो भी हो करके आओ, मुस्कुरा ही नहीं सकते तो क्या फायदा? ऐसा लगेगा ना जैसे लाश को भाई मेकअप लगा दिया, लाल लाल कर दिया, वो तो लाश है ही लाश ना, वो मुस्कुराएगा तो नहीं। तो हम भी ऐसे लाश की तरह है, पर सारा है श्रृंगार, मुस्कुरा नहीं आ रहा, मुस्कुराना नहीं सीखा है, तो हम भी कैसे लगेंगे? चलता फिरता नॉट गुड। तो परमात्मा के जो बच्चे हैं उनके साथ केवल याद, योग, मेडिटेशन, कॉन्सेंट्रेशन, कोई शब्द का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ शिव बाबा को मुझे याद करना है। क्यों क्यों याद करना? क्योंकि वो मेरा पिता है, मेरा दोस्त है। बस जहाँ शिव बाबा बोला अपने को आत्मा समझा, मैं भी एक लाइट हूँ, शिव बाबा भी एक लाइट है, एक बिंदी है। जैसे हाथी का बच्चा हाथी है, घोड़े का बच्चा घोड़ा है, शेर का बच्चा शेर है, हाँ जी। और मुझे आत्मा का जो पिता है वो भी आत्मा जैसे ही है, वो आत्मा है तो मैं भी आत्मा जैसे ऊपर परमात्मा है। जैसे मैं परमात्मा शिव बाबा लाइट है, मैं भी लाइट हूँ, वो याद करती हूँ, तो मेरी बुद्धि खुद ब खुद जहाँ वो रहते हैं वहाँ चला जाता है। अच्छा एक और एक्सरसाइज है, एक और एक्सरसाइज करेंगे, एक और आराम से बैठो, आराम से बैठो, सीधा बैठो, सीधा बैठो। आपके कोई भी जिनसे आपका बहुत प्यार है, जिनसे आपका अच्छा स्नेह है, वो कोई भी हो सकता, वो है नहीं है इस संसार में नहीं है, या कहीं और है, दूर है, विदेश में, कहीं भी होंगे, आप उन्हें याद करें। आप बैठे बैठे याद करो, आप उस व्यक्ति को याद करो जिनसे बहुत प्रेम करते हैं, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, याद करें। वो कैसे हैं, यथे कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे हंसते हैं, उनके साथ बिताए वो बहुत अच्छे क्षण याद करें। किया किया किया, कौन कौन किया? वेरी गुड। तो वो व्यक्ति यहां आया या आई, या आप उधर गए? हाँ, मैंने बोला आपको उधर जाने को, नहीं बोला ना, अपने आप मन चला गया, ठीक है। अच्छा, उस व्यक्ति को याद करते समय कौन कौन आंखें बंद करके याद किया, हाथ खड़ा करो। कौन कौन खुले आंख से किया? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, उस व्यक्ति को याद करते समय कौन कौन उस व्यक्ति का नाम जाप किया? आपने उनका नाम जापा था? नाम जप किया अभी अभी? नहीं नहीं, जप करना, राम 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 राम, शिव शिव, ऐसे कौन उनका नाम जप किया? इसको योग कहते हैं, नेचुरल है, स्वाभाविक है। जहां हमारा संबंध है उनको याद करते ही मेरी बुद्धि में कहीं भी हो वो उधर चली जाती है जहां वो व्यक्ति है या थे। इसको कहते हैं इट्स अ पिलग्रिमेज ऑफ रिमेम्बरेंस, याद एक यात्रा है। हम यहाँ पैर से आप वहां चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, अमरनाथ जाओ, सोमनाथ जाओ, हरिद्वार जाओ, यात्रा करते ना लोग। यात्रा क्यों करते? भगवान का दर्शन करने, और भगवान के सामने जाके आंखें बंद कर देते हैं। अब दर्शन के लिए आप इतने दूर गए और आंखें बंद कर ली तो फायदा क्या? दर्शन माना देखना ना। अब यहां मन जो है, अब भगवान के वहां पर आप अब अमरनाथ गए, सोमनाथ जहां भी गए, और काशी गए, उधर गए, और वहां पर खड़े होने के बाद भी मंदिर में जरूर नहीं है आपका मन वहां पूरा समय टिका रहे। कभी घर चला जाए, कभी सामान कहाँ है, कभी होटल में, कहाँ कहाँ मन जहां जहां वहां बुद्धि जाएगी। पर यहां जो है हम यहां बैठे बैठे मन को दौड़ाते हैं, मन को यात्रा करने लगाते हैं। भाई तुम वहां चले जाओ जहां ईश्वर सचमुच में है, ईश्वर का निवास स्थान, परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम। तो मन जो है खुद ब खुद इस चांद सितारों से भी पार परम धाम, जो छठा तत्व है, बड़ा सुंदर शांति वाला धाम है, वह मन खुद ब खुद चला जाता है। जितना देर मन वहां है उतने देर ये संसार, ये दुनिया, ये देह याद नहीं रहेगा। इसको कहते योग। और जैसे जैसे हम नींद करते, नींद इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। नींद में रिपेयर, यू नो, सेल्स रिपेयर होते हैं, बहुत सारा सिस्टम्स जो है वो करेक्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर खाना ना भी खाए ना, नींद आवश्यक है इंसान को, और प्रॉपर नींद बहुत जरूरी है, साउंड स्लीप बहुत जरूरी है, क्योंकि वो माइंड को, मस्तिष्क को, ब्रेन को और बॉडी के सब सिस्टम्स को वो ठीक करते हैं। और उस नींद में क्या होता है, जैसे हम नींद में गए तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो शरीर से डिटैच हो जाता है। अभी मच्छर काट रहा है आपको पता ही नहीं है, आपकी जो कंबल है वो नीचे भी खटिया से गिर गया, आप सो गए, आपको पता ही नहीं, कोई बुला रहा है आपको पता नहीं, सो गए। अगर डीप स्लीप है तो सो गए, आपको होश नहीं होता, मतलब पता नहीं चलता कौन आया क्या हुआ, कुछ नहीं पता चलता। इसी तरह हम जागृत अवस्था में जब मन शिव बाबा की याद में जब हम बैठते हैं, तब हमको ये शरीर, जितना देर हम मन वहां लगाए रखते हैं बाबा की याद में, बाबा के गुण में, बाबा के साथ बात कर रहे हैं, एज अ फ्रेंड, एज अ यू नो फादर, जो भी संबंध से आप बाबा को याद कर रहे हैं ना, उतनी देर आप इस संसार के, इस दुनिया के, इस देह के ये कारोबार कुछ याद नहीं आएगा। क्यों? कि मन एक वक्त पर एक सोच को रख सकता है। माइंड कैन होल्ड वन थॉट एट अ टाइम। अगर हम बहुत शांति से बैठेंगे, आपको एक ही थॉट, एक ही सोच के अनुभूति में आत्मा चली जाती, आनंद का, ये दुख वाली बात है, दुख में अनुभूति में चले जाते, आपको ऐसा लगेगा एक मिनट भी बड़ा लंबा समय लगने लगेगा। ओके? तो अगर हम बहुत टू मच सोचते हैं, बहुत फास्ट फास्ट सोचते हैं, तो ऐसा लगता है कि 10 सोच एक साथ मन में आ गया हो और समझ में नहीं आ रहा है। पर एक साथ 10 सोच मन में नहीं आता, पर हम फास्ट सोच रहे हैं, इसलिए हमको ऐसा आभास होता है जैसे कि 10 सोच एक साथ आ गया। जैसे ये फैन देख रहे हैं ना आप, दिख रहा है फैन? फैन के कितने पंख हैं? 3। अच्छा, ये एकदम फास्ट में जाएंगे वो 3 पंख नहीं दिखेंगे, जब एकदम स्लो ही एक खड़ा है तो आपको तीनों ही पंख अलग अलग दिखाई देगा। जब ये फास्ट घूमता है, चलना शुरू करता है, 1 में 2 में 3 में 4 में, जब 5 में फुल स्पीड में रखते हैं, आपको 3 पंख अलग अलग नहीं दिखेंगे। ये तो सबके घर में पंखा तो है ना। इसी तरह मन में भी बहुत सारे विचार फास्ट चलते हैं, घूमते हैं, तो ऐसा आभास हो रहा है जैसे सिर में दर्द हो रहा है और बहुत सारे विचार एक साथ मन में आ रहा है, क्योंकि हम फास्ट सोच रहे हैं। तो एक ही सोच, एक समय पर एक ही सोच होता है, इसमें 3 ही है पंख, ठीक है? तो वो स्ट्रेसफुल होता है, वो तनाव ग्रस्त होता है मन, मन में उस समय शांति नहीं होती है, नींद नहीं आती है और मन को रेस्ट नहीं मिलेंगे, और ऐसी मानसिक स्थिति में हम कोई निर्णय लेने पाएंगे। गुस्सा बहुत आएगा क्योंकि बहुत फास्ट है और सामने से कोई पूछ रहा है, गुस्सा आएगा, आवेश आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, ये सारे जो कीड़े हैं ना, वो बहुत अधिक सोचने का परिणाम है। और जितना मन शांत होगा उतना हम बहुत अच्छे डिसीशंस लेंगे, निर्णय अच्छा लेंगे। जितना मन शांत रिलैक्स्ड रहेंगे, हर बात को हम दिल से समझ सकेंगे। जो व्यक्ति दिल से समझता है ना, उसको पूर्ण रूप से वो पिक्चर सामने क्लियर रहेगा, निर्णय लेने में इजी होगा। आजकल हम जो इंसान सामने से दिख रहा है, वो जो बोल रहा है वही समझ नहीं आती। एक बार बोलेगा समझ आई मेरी बात, वो चिल्ला के बोल रहा है, जबकि आवाज से बोल रहा है, चिल्ला के बोल रहा है, वो बोलने पर भी वो आवाज भी हमें समझ नहीं आता। और वो व्यक्ति के साथ 40 साल रह रहे हैं, पर उस व्यक्ति को हम अभी तक नहीं समझे, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, एक दूसरे को हम समझ नहीं पा रहे हैं। जो सामने दिखने वाला इंसान को आवाज सुनते भी नहीं समझते, देख करके भी नहीं समझते, वो तो दिखता भी नहीं है ना परमात्मा, तो उसको समझेंगे कैसे। तो मन जितना शांत उतना सारी बातें क्लियर समझ में आएंगी। इसीलिए आत्मा का सबसे प्रथम स्वभाव है शांति, और हर इंसान शांति चाहता है, मरने के उपरांत भी उस आत्मा की शांति के लिए कामना करते हैं। May the soul rest in peace। आत्मा जो गए वो शांति में रहे, शांति मिले। अभी जो चला जाता है सिर्फ उसी को शांति मिलना जरूरी नहीं, जो रहता है उसको सबसे ज्यादा शांति चाहिए। वो तो गया सो गया, हम कहते हैं वो गया, उसको शांति शांति प्रार्थना करते हैं, वो शांति के सभा लगते हैं। वो जो जिंदा है वो उसका क्या, उसका क्या, उसके लिए कोई सभा नहीं लगती। भाई आज हमारे घर में वो अशांत है, चलो हम सब बैठ करके उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसा कोई करता है? वो तो मरने के बाद ही करते हैं। पर सबसे शांति तो इंसान जीते जी चाहिए ना। तो राजयोग जो है वो हम चलते फिरते, जैसे हम बच्चों को याद करते हैं, पिता को याद करते हैं, हमारे सगे संबंधी को याद करते हैं, ड्राइव करते करते भी याद कर सकते हैं, खाते याद कर सकते हैं, सोते याद कर सकते हैं। तो शिव बाबा हमारा परम प्रिय परमात्मा पिता है, वो हमारा संबंध है, अनादि अविनाशी संबंध है। बस उनको याद करना, बाबा समझ के याद करना। इसलिए हम भगवान का शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, बाबा शिव बाबा कहते हैं, बाबा है ना वो। इट्स अ वेरी इजी टैंजिबल संबंध है ये, वेरी टैंजिबल। ओके, अब हम बाबा की याद में बैठेंगे, हम ये नहीं कहेंगे राजयोग करेंगे, मतलब तो वही है, पर हम बाबा को याद कर आराम से बैठेंगे और आंखें खोल के बैठेंगे। राजयोग को हम ओपन्ड आई मेडिटेशन भी कहते हैं। द बेस्ट कॉन्सेंट्रेशन एवर इन द वर्ल्ड इज विद आईज ओपन। जब आंखें बंद करके आप योग लगाएंगे, ध्यान करेंगे, आपको लगेगा भगवान का साक्षात्कार भी हो गया। जैसे आंख खुला ऐसे लगे मैं धरार से नीचे आ गए, और फिर वास्तविकता में जब आएंगे सब वैसे के वैसे। तो ये योग कोई कल्पना नहीं है। हाँ बेशक वी गो, द प्रोसेस वही है, पर वो विजन क्रिएट करते हैं आत्मा का, परमात्मा का, और इस विजन को होल्ड करते हैं। ये वास्तविक है, रियलिटी है। हाँ जी, इसलिए आंखें खोल के याद करते हैं, बाबा को आंखें बंद करके याद नहीं करते। बंद करने की जरूरत भी नहीं, मंत्र जपने की जरूरत, शिव बाबा ओम शांति, ये सब कुछ नहीं। आप मन से बातें करो बाबा से, प्यार से बातें करो, निस्वार्थ भाव से करो, बाबा के गुण गाओ, महिमा जो है, कौन है मैं, किसका बच्चा हूँ, उस प्राउड, उस प्राइड में, उस नशे में, उस खुशी में मन आनंदित हो जाएंगे। और जैसे जैसे मैं बाबा को याद करती जाऊंगी, वो बाबा का प्यार, वो आनंद, वो शांति आत्मा को जैसे मिलते जाएंगे, और आत्मा जो है वो तृप्त होती जाएगी, और उस तृप्ति में मन ठहर जाता है। इसको कहते हैं स्थिर मन। तो फिर भटकना, इधर जाए इधर जाए, फिर मन उत्पन्न, इच्छाएं उत्पन्न नहीं होंगे, संकल्प की इच्छा भी उत्पन्न नहीं होगी। पेट भर गया, मेरे अपना स्वाद का मुझे मिल गया, तो मुझे अलमारी खोलो, फ्रिज खोलो, फिर और कुछ खा लो, वो फिर खा लो, वो एक्स्ट्रा जो खाते हैं वो जरूरत ही नहीं है। अपने पेट भर के, अपने पसंद के, अपने रुचि के, अपने स्वाद का खाना खाया हो, फिर और कुछ खाने को इच्छा होगा, कुछ और दे दे, आप खाओगे? कहता भैया नहीं, इधर तक खाया है, हमको अभी इतना भी खाने का जगह ही नहीं है, इच्छा नहीं होंगे खाने को, क्योंकि तृप्त है। एंड इट्स ऑल अबाउट द टेस्ट मीन्स द एक्सपीरियंस, वो स्वाद, वो परमात्म प्यार का स्वाद, आत्मा उसका रस का स्वाद ले रही हो, फिर और स्वाद तो सारे फीके पड़ेंगे। ओके, तो हम ट्राई करते हैं। अभी आराम से बैठे, आंखें खोल के बैठे और पीठ सीधा रखें। किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। अभी 5 मिनट तक बगैर हिले जो भी पोज में आप बैठना चाहो, पैर ऊपर करके बैठो, पैर नीचे करके बैठो, आप कर सकते हो।
दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें परमात्मा को सहज कैसे याद कर सकते हैं, और हमें बहुत अच्छी गहरी बात बताई कि संबंध भी दो प्रकार से, एक धर्म के संबंध, एक आध्यात्मिक संबंध। आध्यात्मिक संबंध से हम कैसे सहज तरीके से परमात्मा की याद में प्राप्तियों को अनुभव कर सकते हैं। बहुत सहज उदाहरण दिए आम और गन्ने का। आम कहीं ना कहीं थोड़ा सा खट्टा होता है, लेकिन गन्ना कहीं से भी मीठा ही मीठा है। तो परमात्मा भी मीठे से मीठा है, तो उसकी याद में हम सब बैठेंगे। तो पुनः मैं आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमें सब परमात्मा की याद में बैठेंगे।
आंखें खोल के बैठे और सीधा देखे सामने। अभी कई बार ये भी होता है आंखें कहाँ टिकाए, तो सामने एक पॉइंट ऑफ लाइट है, वहां सिर्फ आपका आंखें टिका सकते हैं, या ब्रह्मा बाबा के चित्र के ब्रिकटी के बीच में आपके आपके नजरें टिका सकते हैं। पर वास्तव में आपको वो देखना है जो आप मन से सोचते हो। आपके सारे विचार को ब्रिकटी के बीच में एकाग्र करें, सब तरफ से मन को हटाएं, ब्रिकटी के बीच एक चैतन्य शक्ति विराजमान है, जो आध्यात्मिक शक्ति है। जिसे हम आत्मा कहते हैं। शरीर के हर अंग को नियंत्रण करने वाली आत्मा है, और मैं वो आत्मा चैतन्य शक्ति हूं। जैसे चमकता हुआ एक छोटा सा सितारा मस्तक के बीच में विराजमान है, मुझे आत्मा में सोचने की ताकत है, जिसे मन कहते हैं। जीवन के हर परिस्थिति में मैं निर्णय लेती हूँ, निर्णय लेने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं। मुझे आत्मा में कार्य करने की क्षमता है, समझ है, विवेक है। इसलिए मैं चैतन्य शक्ति हूं, मन बुद्धि संस्कार सहित मैं अति सूक्ष्म ज्योति सा बिंदु हूं। मुझे आत्मा का निजी गुण शांति है। मेरा रूप है शांति, मेरा स्वभाव है शांति, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। यही मेरा असली पहचान है। इस संसार रूपी रंगमंच पर मैं आत्मा अपना पार्ट अदा करने आई हूं। शरीर रूपी वस्त्र धारण कर इस सृष्टि रंगमंच पर अभिनय कर रही हूं। जैसा ही मेरा अभिनय पूरा होगा, शरीर रूपी वस्त्र को छोड़कर मैं आत्मा अपना घर वापस जाऊंगी, जो इस संसार से पार है, पंच तत्वों से पार, सूर्य चांद से भी पार, अपने मन और बुद्धि को ले चले सूर्य चांद से पार परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम। यही मेरा निजी धाम है। जहां सर्वत्र शांति है, कोई बंधन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई सोच भी नहीं है, क्योंकि शरीर वहां नहीं होते। मैं आत्मा अपना निजी स्वरूप में स्थित हूं। उसी घर में मेरा पिता परमात्मा शिव बाबा भी परम धाम निवासी, उसी घर के निवासी हैं। जो मेरा पिता है, मेरा सतगुरु है, मेरा स्वामी है, मेरा दोस्त है। प्यारे बाबा, आप मेरे सर्वस्व हो। जन्म जन्मांतर हम आपको ढूंढते रहे, अब मैंने आपको पहचाना। आप सर्वशक्तिवान हैं, शांति का सागर है, पतित पावन है, प्यारे बाबा। हम कभी आपको नहीं छोड़ेंगे, दिल ही दिल, मन ही मन बाबा के साथ जो भी बात करना चाहे, बड़े प्यार से बात करें। दिल ही दिल, मन ही मन, जिसको रू रिहान कहते हैं, परमात्मा के साथ वार्तालाप। चलते फिरते जीवन के हर कार्य करते हम मीठे बाबा को याद करेंगे। अपने आप को भी याद रखेंगे, मेरी निजी पहचान क्या है, कौन हूं मैं, किसकी संतान हूं, और उसी स्मृति से हर कर्म हम करेंगे। आप सब से मिलके बहुत अच्छा लगा और आशा है आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे यहाँ से जाएंगे आप, कोई भी कड़वाहट यहाँ से प्लीज मत ले जाना। आप ईश्वर के घर आए हैं, अपने घर आए हैं, आपके मन में सारी बातें जो है यही छोड़ के जाना। और आपसे हम कुछ मांगे, आप देंगे? कौन देगा? वेरी गुड। आज के बाद बोलू? बोलू नहीं बोलू? करेंगे तो बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। आज के बाद कुछ भी हो जाए, एनीथिंग, पर मुस्कुराना नहीं छोड़ना। हो सकता? कौन कौन करेगा? कब से करेंगे? थैंक यू। करके दिखाएं? वेरी गुड, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच, ये आपका गिफ्ट हमारे पास रहा, ठीक है। कोई आपको डांटेगा, आपके ऊपर इल्जाम लगाएगा, कोई मुस्कुराना ना छोड़े, हाहा हंसना नहीं, मुस्कुराना, अर्थात अपने दिल को कष्ट ना दे। मैं आपको एक बात बताओ भैया, सारी दुनिया तो हमारे दिल को दुख देते, कष्ट देते, हम भी बेचारे उस दिल को कष्ट दे, कौन उसको सुख देगा? दिल तो मेरा ही है ना, सारी दुनिया ही कष्ट दे रहे, कम से कम मैं तो उसको सुख दूं। तो क्या आप अपने दिल को सुख खुश रखेंगे? खुश रखेंगे तो मुस्कुराहट होगा, ये खुश नहीं है तो ये भी मुस्कुराहट नहीं होंगे। कौन कौन अपने दिल को सुख देंगे? अब जाना, अभी है, बहुत है, लड़ाई झगड़ा है, सब कुछ होगा, पर फिर भी अपने दिल को दुख नहीं देना, उसको खुश रखना। ओके, थैंक यू।